का हूँ। तो स्वाभाविक कल जानते हैं कितने बजे प्रस्थान है, हैं? कितने बजे? ठीक है, आप वहाँ की भी कथा हम लोग सुनाते हैं, रास्ते में सुना देते हैं, लेकिन अंधेरा रहेगा, चलना ही चलना रहेगा। पानी गांव इस पूर्वी तट पर है और पश्चिम तट पर वृंदावन है, जमुना जी बीच से प्रवाहित होती है। एक बार घूमते घूमते यहाँ पर दुर्वासा ऋषि आ गए थे। दुर्वासा ऋषि का गांव भी कहा जाता है पानी गांव। दुर्वासा ऋषि इधर आए थे तो जोगी हैं, बड़े सिद्ध महात्मा, बाजू में आगे तो लोग आजू बाजू के लोग आते थे, दर्शन करते थे। और दुर्वासा ऋषि के विषय में प्रचलित बात थी, वो क्या खाते थे, दूब दूब घिस लेते थे और उसका रस पीते थे, और वो कुछ नहीं खाते थे, इसीलिए दुर्वासा उनका नाम है। दुर्वा घास को खाते थे इसलिए उनका दुर्वासा नाम है। तो बहुत लोग आते थे दर्शन करने, आ रहे हैं दर्शन करना है, साधु है, महात्मा है, आशीर्वाद लेना है। राधा रानी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, सबसे बेस्ट कुक होने का ख्याति थी, तो सिद्ध महात्मा है। एक दिन जो गोपियां थी, भगवान की गोपियां, ब्रज की गोपियां, उनके मन में हुआ कि हम लोग भी साधु महात्मा हैं, चलते हैं दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेंगी। और इसके मन में अभी विचार है कि थोड़ा चलो अब साधु महात्मा का दर्शन करते हैं, थोड़ा पिकनिक भी करेंगे, वहीं भोजन बना कर ले चलते हैं, वहाँ खाए पियेंगे, हम लोग दुर्वासा ऋषि को और अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे। लोग तो कुछ खाते पीते हैं नहीं, वो तो कुछ खाएंगे नहीं। तो खूब बढ़िया विविध पकवान 56 भोग, यह तक ऋषि को अर्पित करना है। अभी तक ऋषि कुछ खाने वाले नहीं, तो हम लोग खूब बढ़िया से वहाँ पर भोज करेंगे, वन भोज करेंगे, पिकनिक हम लोग करेंगे। तो तैयार विभिन्न घरों में तैयार करके चली, दुर्वासा ऋषि पूर्वी तट पर हैं, वृंदावन पश्चिम तट में, पार कैसे होंगे? तो वहीं पर भगवान थे जमुना के तट पर, बड़ा आसान काम है, आप पार कर सकते हो, जाओ जमुना जी के तट पर खड़े हो जाना, और खड़े होकर तुम यही बात केवल अटर करना, मुंह से निकालना, हे जमुना जी, यदि कृष्ण स्वप्न में भी किसी स्त्री का मुंह नहीं देखे हैं, स्वप्न तो मतलब ही नहीं है, स्वप्न में भी किसी स्त्री का वो देखे नहीं है, उसका प्रयास नहीं, उससे टच नहीं किए हैं, यदि यह बात सत्य है तो है जमुना जी हमको रास्ता दे दे। वही गोपियां जो कि रोज छेड़खानी करते थे, क्या तंग करते थे, क्या क्या, तो उन लोगों को तो बड़ा आश्चर्य है कि ये तो होने वाला नहीं है, ये कैसे है, रोज रोज हजारों हजारों गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ आप छेड़खानी करते हो, तंग करते हो, आप कहते हो कि ये सत्य बात है, जमुना जी रास्ता देंगे, तुम जाकर देखो, यदि वह बात सत्य नहीं होगी तो मैं दूसरा उपाय करूंगा, नौका की व्यवस्था कर सकता हूँ। कृष्ण बार बार कह रहे थे ठीक है ट्राई देखते हैं। आई जमुना जी के तट पर, हाथ जोड़कर सभी गोपियों ने कहा, जमुना जी यदि कृष्ण स्वप्न में भी किसी स्त्री का मुंह नहीं देखे हैं, दर्शन नहीं किए हैं, स्वप्न ऐसे तो मतलब ही नहीं है देखने का, स्वप्न में भी नहीं देखे हैं, एकदम नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, कभी किसी स्त्री का चिंतन नहीं, यदि यह बात सत्य है तो हे जमुना जी आप हम लोगों को जाने का रास्ता दे दीजिए। यह शब्द इस वाक्य का गोपियों ने जो ही उच्चारण किया तो जमुना जी का जल स्तर नीचे घसने और घुटने से भी नीचे पानी हो गया और सभी उसे चलकर पार हो गए। इस पार तो नहीं, सब पक्षपात है, सत्य बात कुछ नहीं है, ऐसा ही होता रहता है। यहाँ ही तो ऋषि हैं, प्रणाम और सब कुछ यह लाए हैं, सारा तो 56 भोग विभिन्न प्रकार के पकवान था, मिष्ठान था, अर्पित करने लगी दुर्वासा ऋषि से कह करके, आपके लिए हम लोग लाए हैं, बनाई हैं, ग्रहण कीजिए। और उस दिन उनको भारी आश्चर्य हुआ कि दुर्वासा ऋषि खाने लगे।
एक एक करके आशा था कि भाई इतना खीर से पेट भर जाएगा तो पूरी छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, लेकिन वो तो उस दिन सब खा गए। भारी फ्रस्ट्रेशन हुआ तो पिकनिक का प्रोग्राम तो फिर हो गया। यहाँ तो आया था कि अपने लिए बनाए थे खूब बढ़िया से, खाएंगे वो खाएंगे, और तो साधु सब खा गए, अपने लिए कुछ नहीं बा। बहुत निराशा हुई। कहले कि हमने सुना है कि ऋषि केवल दूध का रस पीते हैं, सत्य बात है, सब कुछ खा गए, क्या गए, इतना तो मैंने गोवर्धन पर्वत ही इतना नहीं खा। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन अब छोड़ो, जो कुछ है घर पर जाकर भोजन बनाएंगे, खा लेंगे। तो लौटने की बात थी, फिर वही जमुना जी को पार करना है, तो कैसे पार जाएंगे, तो साधु महात्मा इनसे कोई आशीर्वाद लेते हैं, कुछ युक्ति बताएंगे कैसे पार। तो उन्होंने समस्या का रखा गोपियों ने कि हम लोग जमुना जी को पार करना है, कैसे आप कुछ आशीर्वाद दीजिए हम लोग पार कर। तो वो क्या कहे कि आप पार, जमुना जी को पार करना एकदम आसान, तुम जाओ जमुना जी के तट पर खड़ा होना और कहना कि दुर्वासा ऋषि दूध के रस के अतिरिक्त अपने जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं खाए।
सत्य है, देखिए जमुना जी हम लोग को रास्ता दे दिया,
अब इनके सामने पूरा इतना पकवान खाए हैं, ऊपर हैं, कुछ भी नहीं, टच भी नहीं किया है। तो ये तो मैंने लगा कि एकदम दुनिया में सच्चाई नाम का कोई चीज ही नहीं है, झूठ ही झूठ हो रहा है। लेकिन अब क्या करें, जाना तो है ही। जमुना जी के तट पर गई और यही बात कही कि जमुना जी, ये दुर्वासा ऋषि दूब दुर्वा ग्रास घास होता है उसके रस के अतिरिक्त अपने जीवन में कभी भी कुछ भी अन्न इन्होंने टच नहीं किया है, यदि यह बात सत्य है तो हे जमुना जी आप हमको रास्ता दे दीजिए जाने। इतना उच्चारण करते हैं जमुना जी का जल स्तर फिर से और पार। सब गोपियों को तो लगे वास्तव में सब कोई सच्चाई और ये सब झूठी ही बातें हैं कृष्ण के विषय में और दुर्वासा ऋषि के विषय में। बड़ा आश्चर्य हो रहा था कृष्ण पर भी मैंने झूठ बोलने का लंक्षण और ऋषि पर, तो समझ गए ऋषि महात्मा तो ऐसे ही हाला किए हैं। कुछ साधु होते हैं ना फलाहारी, घोषित कर देते हैं। लेकिन अब ऐसे है ना, आ रहा हम भिष्मपंचक कर रहे हैं, भिष्मपंचक कर रहे हैं, लेकिन अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा है फल भी खा रहे हैं। तो आए तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बड़ा शक हो रहा था कि ये क्या सब झूठी बातें, ऐसे ही ऋषि महात्मा लोग झूठ बोलते हैं कृष्ण। जब वो घर में प्रवेश की तो उन्होंने देखा कि जो जो गोपियां पकवान बनाई थी उनको घरों में एकदम अक्षुण था, थोड़ा भी उसमें तुलसी पत्ता भी उसमें से नहीं लिया गया था, पूरा का पूरा वहां पर रखा। दुर्वासा ऋषि जानते थे कि ये किस इंटेंशन से लोग आई हैं अपने खाने के लिए हमको, इसीलिए अपने योग बल से लगता था कि वो खा रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसफर कर देते थे आईजीपी उनके घरों में। उन्होंने देखा कि एकदम बिल्कुल वहां भगवान की यह लीला, इसी पानी गांव में, इसी गांव में दुर्वासा ऋषि रुके हुए थे, उसको दुर्वासा ऋषि का भी गांव कहा जाता है, तो पानी गांव, तो वहां से हम लोग पार करें तो रात्रि रहेगा, अंधेरा रहेगा, रात वहां पर लोग रुक नहीं सकेंगे, तो यह पानी गांव की संक्षिप्त कथा है। रास लीला से हठात एक श्लोकी डाल देते हैं, हठात वहां अदृश्य हो गए, सभी गोपियों से गायब हो गए, और उसमें श्रीमती राधा रानी को भी ले करो, राधा रानी श्रीमती राधा रानी को लेकर और सभी गोपियों को छोड़कर भगवान अंतरहित हो गए, अदृश्य हो गए। सौ भग मदम विक्ष मानम च केशव
प्रसम आय प्रसाद आय तत्र गोपियों के मन में, सामान्य गोपियों के मन में अभिमान आया कि आज कृष्ण हम लोगों का समादर राधा रानी के बराबर कर रहे हैं, आज हम राधा रानी के बराबर हो गए, सबको समान रूप से डील कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे भगवान उससे। तो गोपियों में सौभाग्य मद, हम लोगों का सौभाग्य आज हम लोग राधा रानी के समान, हमारा का सौभाग्य है। और राधा रानी को इस बात का दुख था कि आज पहले तो हमको सबके सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण करते थे, लेकिन आज वो क्या करते हैं, सबके समान हो, तो मेरा सौभाग्य कम हो गया। गोपियों ने सोचा कि हम लोगों का भाग्य बढ़ गया, और राधा रानी ने सोचा कि आज तो मैं सभी वन ऑफ द गोपी हो गई। तो उन गोपियों के मान को भंग करने के लिए सौभाग्य मद को और श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, यह बताने के लिए कि नहीं नहीं मैं सभी गोपियों को बराबर नजर से नहीं देखता, आपसे विशेष प्रेम है, इसके लिए भगवान श्रीमती राधा रानी को तत्र अंतर दिया था। देखते देखते श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान हम से अंतर दिया था। इसके बाद गोपियां भगवान का अन्वेषण करने लगी और भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ अकेले रास क्रीड़ा करते, रास विहार कर रहे। उसी क्रम में क्या हुआ कि श्रीमती राधा रानी को ऐसा लगा कि मेरे लिए सभी गोपियों को उन्हें त्याग दिया। एक पॉइंट पर राधा रानी ने कह दिया भगवान से कि मैं अब चल नहीं सकती, मुझे बहुत थकावट हो रही है, मैं अब चल नहीं सकती हूँ, मुझे थकावट है, पैर में दर्द हो रहा है, तो आप यदि कहीं चलना चाहते हैं तो मुझे अपने कंधे पर ले। जब देखिए भगवान का चुपचाप बैठे थे, उनका नहीं पैर, वो तो नाच रहे थे, वो भी जंगल में घूम रहे थे, तो राधा रानी का यह बात है मैं थक गई हूँ, कृष्ण नहीं थके हैं, वो भी थके होंगे ना, लेकिन नहीं मैं थक गई हूँ और आप मैं चल नहीं सकती हूँ। भगवान ने कहा ठीक है मैं बैठता हूँ, भगवान आगे बैठ गए, हमारे कंधे पर चढ़ दिए, मैं ले जाऊँ। तो भगवान बैठे थे, श्रीमती राधा रानी खड़े पीछे पर कंधे पर चढ़ने आई, जो अभी पैर रखा तब तक कृष्ण अंतर्धान। और उनको ही सिखाना था कि वो थक गए और मैं नहीं थका हूँ, सो रहा था तो नृत्य कर रहा था सबके साथ, मैं ज्यादा नृत्य कर। तब श्रीमती राधा रानी का पता लगे, बहुत दुखी हो गए, रोने लगे। तो उसी क्रम में जो मान हुआ था श्रीमती राधा रानी को पहले कि मैं आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, हमको अकेले लेकर सभी गोपियों का तिरस्कार करके छोड़ करके केवल मेरे साथ विहार कर रहे हैं, तो उनको मान हुआ था। और मान करके यहीं पर इसी स्थान पर बैठी थी, आकर बैठ गए। भगवान उनको और भी समझाए बुझाए, चढ़ने की बात करें तो मान हुआ था इसी स्थान पर, इसीलिए इस स्थान का नाम मान, पहले भी सरोवर था लेकिन चूंकि भगवान राधा रानी ने इस स्थान पर मान किया कि मैं कृष्ण से बड़ी हूँ, मैं कृष्ण से श्रेष्ठ हूँ, कृष्ण से हमारा पूरा सम्मान नहीं करते, उनसे हमारा संबंध नहीं रखना है, इसी स्थान पर हुई थी, इसलिए इस स्थान को मान सरोवर कहते, कुंड का नाम मान सरोवर है। इसके अतिरिक्त एक और घटना घटी थी, इसकी चर्चा हम लोग बार बार करते रहे हैं कि रास लीला में, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए बहुत बहुत ग्रुप ने प्रयास किया था और लोगों को सफलता भी मिली थी। हम कह रहे दंडकारण्य की ऋषि लोग भजन करके गोपी का शरीर प्राप्त किए हुए थे, इसके अतिरिक्त अयोध्या की स्त्रियां भी गोपी बनी थी, मिथिला की स्त्रियां भी गोपी बनी थी, ऋचाएं वेद के मंत्रों ऋचाएं वे लोग भी गोपी बनी थी, बहुत लोग गोपी बनकर भजन किए थे रासलीला में प्राप्त करें। और रासलीला प्रारंभ होने वाला था तो शिव जी भी रासलीला में शामिल होना चाहते थे, शिव जी की भी इच्छा थी कि मैं भी रासलीला में भाग लूं, लेकिन आज ऐसा वर्णन किया गया, महाराज वर्णन कर रहे थे कि रासलीला में
केवल गोपी का प्रवेश है, गोपी का भाव और गोपी का शरीर भी होना चाहिए, इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऐसा नहीं कोई दूसरे जाति में जन्म हुआ है वह भाग ले सकती है, कोई स्त्री नहीं, स्त्री होना चाहिए और गोपी होना चाहिए और गोपी भाव भी होना चाहिए। शिव जी न तो शरीर गोपी का था न तो भाव गोपी का था, दास्य भाव के उपासक है ना, श्रृंगार रस के उपासक शिव जी नहीं है, और शरीर तो अरे स्त्री का ही शरीर नहीं है और गोपी का शरीर कहाँ, वही बेढंगा कुरूप शरीर। लेकिन उत्कट इच्छा थी कि नहीं मुझे भी भाग लेना चाहिए, तो उन्होंने सखियों से विशेषकर वृंदा देवी से प्रार्थना किया, नित्य तो मेरा अधिकार नहीं है कि मैं गोपी बन सकूं, लेकिन कम से कम रास लीला के लिए हमको प्रवेश मिल जाए। तो उन गोपियों ने, वृंदा देवी ने उनको आदेश दिया था, यहीं पर शिव जी को लाया था यहाँ इस कुंड में, और शिव जी का जो वेशभूषा है उसी वेशभूषा से प्रवेश कराया गया था, इसमें जल में प्रवेश कीजिए, उसमें डुबकी लगाए, जब उसमें डुबकी शिव जी लगाए तो जब बाहर निकले तो उनको जैसा गोपियों का जैसा वेशभूषा होता है, जैसा उनका शरीर होता है, वहीं प्राप्त हो गया था। यह स्थान है, शिव जी यहीं से उनको रासलीला में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, उसके पहले वृंदा देवी ने अथवा जोग माया ने पौर्णमासी में यहीं पर उनको स्नान कराया था, यह इसलिए भी सरोवर बहुत महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन प्रसाद आ गया है और हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे।